ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तम देह तंत्र प्रसमाय पापमनाम तम देह तंत्र प्रसमाय पापमनाम निदेश भाजम च विभो विभूतये निदेश भाजम च विभो विभूतये। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रपात की द्वारा शिल प्रपात की जय। अनुवाद, हे भगवान, आपने पतितों के पाप पुण्य कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। चूंकि वो ये पापात्माएं आपके निर्देश पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से शुक्र तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तत्पश्च पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था, अब भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुता जताने की इच्छा से कारणबद्ध है, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती है तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है जिससे वे भगवान के धाम जा सके। भगवान का अवतार अनेक है, जैसे ब्राह मत्स्य कच्छप तथा नृसिंह। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार है। यह स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल देव का प्राकट्य पदभ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। तो सुबह का भागवत सत्संग में आप सबका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं क्या प्रसंग चल रहा है, तो इसके इंट्रोडक्शन का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब पुराने हैं। तो आइए श्लोक में ध्यान देते हैं हम। ये अध्याय है भगवान कपिल के कार्यकलाप। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को भक्ति का महिमा के बारे में बताया। इसका आगे आगे अध्याय में हम देखते हैं जो कर्म बंधन का बारे में बताए, फिर जीव का जो सकाम कर्मों का गति, फिर जीव को इस संसार में पतित होने के बाद जो कष्ट है मातृ गर्भ से लेकर माया के प्रभाव से, वो सब भगवान कपिल देव ने बताए। फिर अभी इस अध्याय में माता देवहूति ने भगवान कपिल देव का प्रकाट्य का कारण और भगवान का महिमा के बारे में बता रहा है। आज का श्लोक में आप देखिए, तम देह तंत्र हो। आप लोग सब बोर्ड की ओर ध्यान दीजिए और हम श्लोक में अपना मन को केंद्रित करते हैं। तम देह तंत्र, ये देह तंत्र देखिए, और आचार्य लोग बताते हैं भगवान जब भी शरीर धारण करते हैं कृपा परवश होकर, तो यह भगव माता ने पहले बताते हैं, हे प्रभु हे भगवान, आप कृपा परवश होकर इस देह तंत्र को धारण किए हैं आउट ऑफ योर कंपैशन। भगवान सब जब शरीर धारण करते हैं कृपा करके भगवान अवतरित होते हैं, किस लिए अवतरित होते हैं वो आगे आगे शब्द में बताते हैं माता देवहूती ने। लेकिन देहतंत्र भगवान का अवतार और बौद्ध जीव को संसार में आना में बहुत अंतर है। बौद्ध जीव अपना कर्मों का चक्र का गति से उसको फेंक दिया जाता है मातृगर्भ में, 84 लाख जोनी में उसको भटकना पड़ता है अपना कर्मों का उस फल के कारण असहाय होकर। और उस असहाय स्थिति का वर्णन अगले श्लोक में भगवान कपिल देव स्वयं अपना मुख से बताया किस प्रकार कीड़ा मकड़ा उसको काटते हैं बचपन में मातृगर्भ में, किस प्रकार उसको माल मूत्र का थली में रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो देहतंत्र भगवान ने अवतरित हुए इस दिव्य रूप धारण किए हैं, तो माता देवहूति बताते हैं कि इस देहतंत्र आपने धारण किया कृपा परवश होकर, किस लिए? प्रसमायो अपमानाम। देहतंत्र मीन्स देह जिसका तंत्र, जिसका शरीर में बहुत सारे आभूषण आदि अलंकार आदि है, जो देहतंत्र जो अपना शरीर को विग्रह का रूप में प्रकाश करते हैं, जिसका दर्शन करके दूसरा लोग भी प्रसमायो अपमानाम, जिसका दर्शन से ही दूसरा का पाप विनष्ट हो जाता है। तो यह बताते हैं आपने जो देह तंत्र धारण किए हैं, इसका अगले श्लोक में माता देवहूति ने बताते हैं आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब प्रलय के समय आप अगर एक पत्ता वट वृक्ष का पत्ता में आश्रय ले सकते हैं, विशाल समुद्र में एक वृक्ष का पत्ता में आप आश्रय ले सकते हैं, तो दूसरा शिशु की भांति जैसे साधारण बच्चा बालक मातृ कुक्षी में प्रवेश करके पिताजी का बीजों के द्वारा मातृ कुक्षी में प्रवेश करके उस माता का देह का अधीन हो जाते हैं, तो आपके लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अन्य बालक जैसा तम ओपी लीलाया, आप लीला करते हैं, आप मेरा शरीर का अधीन होकर आप इस रूप में अवतरित होकर आप कृपा को वितरित करने के लिए आप, ये आपकी लीला है, आप लीला करने के लिए आप आते हैं। फिर बताते किमर्थम दृष्टु, जब भगवान का दर्शन करते हैं कोई, पहले भगवान अवतरित होते हैं पुरुषोमायो पपमनम, कोई भी भगवान का दर्शन करके उसका पाप विनष्ट हो जाता है। तो बताते हैं अगर दर्शन से ही, भगवान का दर्शन से ही पाप विनष्ट हो जाते हैं। फिर आगे श्लोक में बताते हैं, काल का श्लोक बहुत सुंदर श्लोक आएगा, बताते भगवान का जो नाम श्रवण कीर्तन आदि का महिमा के बारे में बताते हैं, जो वो श्रवण करके जीव पूर्ण रूप में मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकते, इवन निशो जोनी का व्यक्ति क्यों ना हो वो भी पवित्र हो सकते। तो भगवान देहतंत्र अलंकार आदि विग्रह आदि रूप में प्रकाश करके प्रसमायो पपननम, बद्ध जीव को दर्शन देकर उसका पाप को नष्ट करते हैं। एक तो ये है, दूसरा है शुक्रादय, तम देहतंत्र शुक्रादय। शुक्रादय मतलब शुक्र आदि बहुत सारे अवतार ग्रहण करते भगवान, बहुत सारे अवतार। एक तो है मत्स्य कुर्म ब्राह आदि ये 24 अवतार, फिर हर युग में अवतार लीला अवतार, कितना सारे अवतार भगवान ग्रहण करते हैं। इसलिए ग्रहण करते हैं कृपा परवश होकर बद्ध जीव को उसका पाप कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आए, अस्त्र सांगो पांगो आदि पार्षद लेकर भगवान आए, भगवान क्या किए? किसी को तो हत्या नहीं किया, किसी को हत्या नहीं किया, लेकिन उसका अंदर का जो डिमोनिया जो स्वभाव है, जो पाप प्रवृत्ति जगाने वाले जो स्वभाव है, उस नचार को, उस आसुरिक भाव को हत्या किया और पाप से मुक्त किया। इसका उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है जुगाई मधाई। जुगाई मधाई को उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु और सबको भक्ति में आकृष्ट किया, भक्ति का इस जोग में युक्त किया। तो भगवान का देवधारण अवतारित का ये कारण है, यह बताते हैं कि देखिए दर्शन चैतन्य महाप्रभु का जो अनुयायी है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। यह तो दर्शन है, यह बताते हैं क्या हम सिर्फ भगवान को दर्शन करके ही पाप से मुक्त हो जाएंगे? दर्शन एक है, आंखों से दर्शन है, एक कानों से दर्शन है। अगर कोई भगवान को ठीक से श्रवण करे, उनका लीला कथा, तो वो क्या करेगा? आगे जाके भगवान का भजन करेंगे, और जब भगवान का भजन में युक्त हो जाएंगे वो, तो ऑटोमेटिकली प्रसमाय पपमानाम, उसका सारे पाप विदूरित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और एक है आंखों से दर्शन है, तो भगवान का दर्शन है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहां खड़ा रहते जगन्नाथपुरी में? गरुड़ स्तंभों का पीछे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस गरुड़ स्तंभों का पीछे क्यों खड़ा रहते, क्यों आगे जाके दर्शन नहीं करते भगवान को? तो चैतन्य महाप्रभु वो दर्शन देना चाहते हैं, वो सिद्धांत को बताना चाहते हैं कि भगवान का दर्शन करने का योग्यता हमारे पास है ही नहीं, हम इस आंखों से भगवान का दर्शन करने का कोई योग्यता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ खंभा का पीछे खड़ा रहते हैं क्योंकि भगवान अपना भक्त गरुड़ का दर्शन करेंगे, और जब गरुड़ का दर्शन करेंगे तो भगवान का कृपा दृष्टि मेरा ऊपर ऑटोमेटिकली पड़ेगा और इससे मैं शुद्ध हो जाएंगे। ये सिद्धांत तो है। तो हम जाते भगवान का दर्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है अरे मैं सीनियर हूं मुझे आगे बढ़ने दो आगे दर्शन करें, नहीं, ये सिद्धांत तो नहीं है अपना। ये सीनियर है, सब लोग को सीनियर समझ के उसको आगे देना है, अपने आप को पीछे रहना है, तब भगवान का कृपा दृष्टि पड़ेगा। इसलिए हम्बलनेस बहुत जरूरी है भक्ति में, हम्बलनेस जरूरी है। चैतन्य संगी गण वैराग्य प्रधान, चैतन्य संगी गण वैराग्य प्रधान, जा देखे तुष्ट हन गौर भगवान। चैतन्य महाप्रभु का पार्षद लोग, फॉलोअर लोग तो बहुत ही हम्बल एवं बहुत ही अनाशक्त है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनके ऊपर वर्षित होता है। फिर आगे बताते हैं कि अगर तम देह तंत्र प्रसमायो पपमनम, उनका पाप विदूरित हो जाते हैं, फिर क्या करते भगवान? निदेश भाजम च विभो विभूतये। ये निदेश भाजम, निदेश भाजम उसके लिए कहा गया है जो भगवान का आज्ञाकारी है। दो प्रकार का व्यक्ति संसार में शुरू से ही है, एक तो भगवान का आज्ञा का पालन करते हैं, एक तो पालन नहीं करते। पालन नहीं करते उसको क्या कहते हैं? असुर। और वो शुरू से ही है, शुरू से ही है, दोनों प्रजा, दोनों प्रकार के प्रजा शुरू से है।
तो जो निदेश भाजाम जो भगवान का आज्ञाकारी भक्त है, भगवान क्या करते हैं प्रकट होकर, उस आज्ञाकारी भक्तों का विभो हे प्रभु आप विभूतये, आप विभूतये, उस आज्ञाकारी भक्त को आप महिमा फैला देते संसार में, उसको आप महान कर देते, ये आपका काम है विभूतये। किस प्रकार विभूतये, किस प्रकार उसका महिमा को आप फैला देते हैं, लास्ट शब्द में देखिए, तथायाम अपि आत्मो पतो उपलब्ध है। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। जो आपका आज्ञाकारी है उनका जो विभूत है, उसका जो महिमा आप बढ़ाते, किस प्रकार विभूति प्रदान करते हैं आप उनको, भक्ति और ज्ञान प्रदान करके, उनको आप भक्ति और ज्ञान प्रदान करके उनको आप महिमान्वित कर देते हैं, फेमस कर देते हैं आप उनको। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पा रखे तो प्रभुपाद जी अपना डायरी में लिखा, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। हे प्रभु आप तो मेरा एक बहुत बड़ा टाइटल नाम दे दिया, भक्ति नाई वेदांत नाई कुछ नहीं है मेरा पास, लेकिन मुझे बहुत बड़ा एक नाम दे दिया, भक्ति वेदांत नाम, अभी आप वो नाम सार्थक कीजिए। रजस तमो गुणे इरा सवाई आच्छन्न, ये जो हम जिस देश में आए हैं ये रजोगुण और तमोगुण में ये लोग बहुत ही गिरा हुआ है, तो आप ही कृपा करके मेरा भक्ति वेदांत तो नाम सार्थक करे, मेरा मुंह से आवे ऐसा शब्द बोलाइए जो वो लोग समझ सके। फिर आगे देखिए, इतना भगवान का महिमा फैलाने के लिए, एक तो भक्त भगवान का विभूति फैलाने के लिए चल पड़े 70 साल उम्र में जलदूत जहाज में, और भगवान का विभूति को सारे संसार में फैला दिया, कौन कौन में, कई जगह में बाकी नहीं रहा, तो अभी भगवान का तो कुछ कर्तव्य है ना। भगवान ने देखा मेरा भक्त इस उम्र में अपना गुरु का आज्ञा को पालन करते हुए मेरा महिमा को मेरा विभूति को फैला दिया, तो भगवान का भी तो कुछ कर्तव्य है, ये कर्तव्य है भगवान का, निदेश भाजम विभो विभूतये। हे प्रभु जो आपका आज्ञाकारी भक्त है उसका आप विभूति को सारा संसार में फैला देते, उसको भक्ति और ज्ञान प्रदान करके। और ये कंपटीशन हमेशा है, आज से नहीं है, भगवान और भक्त में ये कंपटीशन है, भक्त चाहते हैं कि भगवान का महिमा फैले और भगवान चाहते हैं मेरा भक्त का महिमा फैले। तो आप देखिए श्री प्रभुपाद जी का गुरु पूजा अभी कहीं ना कहीं हो रहा है सारा संसार में, अभी कहीं ना कहीं देश में गुरु पूजा का टाइम है, 24 आवर्स चल रहा है, और कौन है इस संसार में ऐसा महान जिसका गुणगान महिमा 26 घंटे चल रहे होंगे। तो भगवान अपना भक्तों का महिमा ऐसा फैला देते हैं, तो कॉम्पिटिशन हमेशा लगा रहता है, विभो विभूतये। अब देखिए जब हिरण्यकशिपु को मार दिया भगवान नृसिंहदेव ने, तो भगवान नृसिंहदेव इतना गुस्सा उनका अंदर अब तक है कि ब्रह्मा चंद्र वरुण शिव आदि सारे देवता, इंद्र आदि सारे देवता लोग खड़े आए, इवन लक्ष्मी देवी भी वहीं पर खड़ी है, लेकिन किसी के पास इतना साहस नहीं हो रहा है जे भगवान नृसिंहदेव को जाकर शांत करे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को बताया, देखो तुम्हारे कारण भगवान ने इस अद्भुत रूप धारण करके प्रकट हुए, और उनका गुस्सा को शांत कराने के लिए और कोई नहीं है, इवन उनका अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी भी भयभीत है तो तुम जाओ। बच्चा सीधा जाके गोद में जाम कर दिया और भगवान का सारे गुस्सा शांत हो गया। तो भगवान ने बताते हैं, देखो प्रहलाद, मेरा कोई गलती नहीं है, ये सारे गलती तुम्हारा ही पितामह, ये जो ब्रह्मा जी, इन्हीं का ही गलती है। तुमको इतना कष्ट सहन करना पड़ा, कितना क्या क्या कष्ट तुम्हें दिया तुम्हारा पिताजी, ये सारे कष्ट तुम्हें सहन करना पड़ा, किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत सारे कंडीशन रखा है, हम हर समय अवतरित नहीं हो सकते, 12 महीना का अंदर नहीं है, दिन में नहीं है, रात में नहीं है, तो हमें ये 13 महीना के लिए अपेक्षा करना पड़ा, एक अधिक महीना आता है ना 3-4 साल बाद। तो प्रहलाद महाराज को बहुत सारे तकलीफ का अंदर से जाना पड़ा, बड़ा परीक्षा का अंदर से जाना पड़ा, और जाकर जब प्रहलाद महाराज उत्तीर्ण हो गया तब जाके भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और बता रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, एक कंडीशन तो रखा है ब्रह्मा जी, तो हम तुम्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, मुझे क्षमा करना। फिर प्रहलाद महाराज को बताते हैं, तुम मेरे साथ चलो भगवत धाम। तो प्रहलाद महाराज बताते, नहीं नहीं प्रभु, मेरा बहुत सारे ऑब्लिगेशन है, आप मेरे कारण प्रकट हुए, लेकिन मैं जिससे आपका भक्ति का बारे में सीखा, जानकारी प्राप्त किया, वो मेरा गुरुदेव नारद मुनि, और वो अकेले ये संसार में प्रचार कर रहा है घूम घूम के, उनको सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूं मैं उनको सहायता करूं, उनका मिशन में मैं भाग लूं, उनके लिए कुछ करूं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं उनको छोड़ के मैं ऐसे नहीं जा सकता हूं। यह कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट सहन करके बाद में उसका भक्ति का पूरा पीएचडी डिग्री प्राप्त हुआ। तो प्रहलाद महाराज का वही महिमा ऐसा नहीं है, कोई भक्ति शुरू किया और एक दिन में हो जाएगा, भगवान उसको उसका महिमा फैला देंगे, उसका उसके लिए भगवान कुछ करेंगे, भगवान परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते लेके प्रहलाद महाराज उत्तीर्ण हो गया, और प्रहलाद महाराज का महिमा भगवान ने सारा संसार में फैला दिया। उसी प्रकार पंच पांडव का देखिए, उनका महिमा भगवान ने फैलाया। उसी प्रकार भक्त ध्रुव महाराज आदि जो भी भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं, इवन मृगारी सबे सबे शुरू किया भजन, और तुरंत चारी ओर से उनके पास सब आ रहा है आदमी, फल फूल सब लेकर फिर फुटपल लाइफ चालू करना पड़ा उनको, चारी ओर मृगारी का महिमा फैल गया, जो महान भक्त में परिणत हो गया। तो ये विभूताएं ऐसा नहीं समझना चाहिए भगवान का भक्ति करने से मुझे भौतिक संपत्ति प्राप्त होगा, यहां पर भगवान बताते हैं ज्ञान और भक्ति देकर भगवान उसका महिमा को फैलाते। जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में वार्तालाप हुआ, तो रामानंद चैतन्य महाप्रभु का प्रश्न था कि खेती मध्य कौन खेती सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति भक्त बोली जार खेती है, जो सुनाम है, विभूति है, जो फेमसनेस है, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो बताते हैं रामानंद राय बताते हैं, जो कृष्ण का भक्त बोल के जिसका खेती हुआ है वो असली खेती है, असली सुनाम है, असली विभूति है, और वही रहेगा, बाकी कोई कुछ भी नहीं रहेगा संसार में, कितना राजा आए कितना राजा गए उसका विभूति सब उसी समय खत्म मरने के बाद, लेकिन भक्तों का विभूति जन्म जन्मांतर कई को भी खत्म नहीं होता है। तो भगवान ऐसा विभूति प्रदान करते जो विभूति को भी खत्म नहीं होता है, जिसका महिमा कीर्तन त्रिजगत में होता है, भक्तों का महिमा विभु विभूतये। तो
तम देहतंत्र प्रसमय पपनानाम निदेश भाजम च विभो विभूतये।
फिर आगे देखिए, यथा अवतार तव शुक्रादय,
भगवान बहुत सारे अवतार ग्रहण करते हैं। कोई कोई अवतार में भगवान असुर का विनाश करते हैं, उसका पाप नष्ट कर देते हैं। भगवान असीमित शक्ति का मालिक है। जब जब इस संसार में पाप का बोझा बहुत बढ़ जाता है तो भगवान पवित्राणाय साधुनाम विनाशस्य दुष्कृतम, भगवान आते और वो पाप का बोझ को नष्ट कर देते और भक्तों को अच्छा सुरक्षा प्रदान करते हैं। भक्तों का भक्ति का बढ़ाने के लिए भगवान मदद करते हैं। तो इस प्रकार भगवान बहुत सारे अवतार ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर शुक्रादय भगवान, यहाँ पर माता कपिलदेव ने पहले बुराह भगवान का नाम लिया। जो बुराह भगवान क्या किया था कि जब पृथ्वी को हिरण्यक्ष ने समुद्र का अंदर में किचड़ में रखे छुपा के रख दिया, किचड़ का अंदर, तो भगवान बुराहों के रूप धारण करके उस किचड़ से पृथ्वी को बाहर निकाले। हर रूप में तो नहीं जा सकते, तो भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंट है, जानते हैं। जैसा कोई डॉक्टर है अपना ऑपरेशन थिएटर में जब जाएगा तो अपना मास्क सब धारण करके जाते हैं, गंदगी है, तो भगवान भी टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अनुसार भगवान रूप धारण करते हैं और उस परिस्थिति को संभालते। तो भगवान सुप्रीम इंटेलिजेंट है। तो हम इस श्लोक का मोटा मोटी इस प्रकार सब लोग समझ गया। इस श्लोक में ज्यादा इधर से उधर से बोलने से फायदा नहीं है। तो तम देह तंत्र भगवान कृपा परवश इस शरीर धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। और विशेष करके कपिल भगवान का जो अवतार है जीव को दिव्य ज्ञान देने के लिए, मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। इस प्रकार भगवान प्रसमाय पपमानम, दूसरा का पाप को हरण कर लेते हैं, पाप को नष्ट करते हैं। जो भगवान का निर्देशकारी है उसका विभूति भगवान फैला देते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आमा भजे विषय मागे ए ब्रह्ममूर्ख, आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय कने देव, सचरणामृत दिए विषय भुलाबो। अगर कोई भगवान का भजन करे और वो भौतिक विषय मांग रहा है, भौतिक विषय को विष का साथ तुलना किया, लेकिन वो जो विष है वो बहुत अच्छा लगता है विषयी व्यक्ति को, वो बिना वो रह नहीं सकते। जैसे सांप है, सांप का शरीर में विष है, वो विष बिना सांप रह नहीं सकते। अगर उसको विष निकाल दिया गया तो पागल हो जाएगा। तो उस प्रकार भौतिक व्यक्ति विषय व्यक्ति उस विष में वो उसको अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। और वो विष धार व्यक्ति मान सर्प अगर किसी को काटे, कोई व्यक्ति को सर्प किसी को काटे विष, तो उसका विष का जाला में वो मर जाते हैं, इतना खतरनाक है विष का जंत्रणा। तो विषय व्यक्ति उस विष से वो जीवित रहते हैं, आनंद लेते हैं, और उस विष भक्त के लिए वो पैजन है, विषय विषय पैजन है। इवन बताते हैं सर्प काटने से कोई तो बस इसी जन्म में मर जाएगा, उसका विष खत्म हो जाएगा,
लेकिन विषय का जो विष है वो एक जन्म में खत्म नहीं होता है, वो जन्म जन्मांतर उसको भोगना पड़ता है, इतना खतरनाक विष है वो। तो भगवान उस विष को क्यों देगा, आमा भगे भजे विषय मागे। अरे मूर्ख, मेरा भजन करते हो अब इस विषय को, इस विष को मांगते हो, कभी नहीं मिलेगा। आमा भगे विषय मागे, यही बड़ा मूर्ख। आमी विज्ञ, भगवान बताते मैं तो इंटेलिजेंट प्रधान हूं, सुप्रीम इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हूं मैं, मुझे भजन करते हैं और विष मांगते हैं, मैं क्यों दूं? तो बताते हैं सत तरणामृत दिए विषय भुलावो, मैं उनको इतना कृपा करेंगे जो अपना चरणामृत अपना कृपा भक्ति देकर उसको उस विषय विष से उसको मुक्त कर लेंगे। ये भगवान का महिमा है। इस प्रकार भगवान उसको, कोई भगवान का भजन करते हैं तो भगवान उसको उस विषय विष से, विषय गर्त से उसको निकाल के बाहर लेके आते हैं और उसका विभो विभूतय उसका महिमा को फैला देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि मां बच्चे के हाथ में चाकू कब देते हैं, अगर बच्चा छोटा है, बहुत नाजुक है, छोटा है, तो मां उसका हाथ में चाकू देंगे? नहीं देंगे ना, हाथ काट फेंकेगा बच्चा, तो उसको हाथ में चाकू नहीं देते। लेकिन वो बच्चा जब बड़ा हो जाते हैं तो उसका हाथ में चाकू रहा है और बंदूक रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, वो अभी सबालक है, जानते कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो भगवान का भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि वो बहुत गरीब हाल में रहेंगे, उसका खाना पीना रहना बड़ा तकलीफदायी होगा, ऐसा नहीं है। भगवान उसको देते हैं टाइम में, किसी को तो भूखा भगवान रखते ही नहीं है, तो भक्तों को क्यों रखेंगे? जो अभक्त है उसको भी ऑक्सीजन, पानी, सूर्य का आलो, बतास सब प्राप्त होता है, तो क्या भक्त को नहीं होगा? भक्तों को जरूर होगा, और भक्तों को तो भगवान आरो अच्छा से देखभाल करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी लंदन में अपना कमरा के विंडो से भक्तों का कीर्तन करते हुए एक मंडली जा रहे थे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो लोग निकल गया रास्ता में, लंदन के रास्ता में कीर्तन करने के लिए, और प्रभुपाद जी जालना से वो देखते हुए रो रहे थे। तो प्रभुपाद जी जब रो रहे थे तो एक भक्तों ने, मैं अपना गुरु महाराज से सुना, गुरु महाराज ने खुद जाकर पूछा प्रभुपाद जी आप क्यों रो रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी थोड़ा घुमा तो वो भाग गया डर के मारे। फिर बाद में शाम को आए, जब आके फिर प्रभुपाद जी बता रहे क्यों रो रहा है थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे देखिए ये जो सारे भक्त लोग मेरा शरण में आए, मुझे सब कुछ त्याग करके मेरा समर्पित हुए हैं मुझे, और इनको मैं बेसिक नेसेसिटी को भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक से इनका पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन ये लोग दिन रात इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहा है। तो उस टाइम का तकलीफ के बारे में बताते रहे थे कि सॉक्स दो कलर का पहनते थे, कपड़ा वो एक जगह में सुखाते थे, रात को आके डाल देते थे, सुबह कपड़ा वही से मिलता था सबको, तो सब कपड़ा पहनते थे जिसका जिसको अच्छा लगता है, फिटिंग होता है वो कपड़ा पहन के चला जाते थे। तो किसी का मतलब शरीर छोटा है, बहुत बड़ा कपड़ा है, कुर्ता है, बहुत बड़ा स्वेटर है, इस प्रकार कपड़ा पहनते थे, इतना गरीबी हाल था, एक दूसरा का इतना प्रेम था, एक दूसरा का इस प्रकार पहन के वो संकीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद जी वो देख के रो रहे थे। तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, बेसिक नेसेसिटीज में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, आप कृपा कीजिए, आप ही संभालिए। तो भगवान ने प्रभुपाद जी को प्रार्थना सुना, तो आज तो एम्बुलेंस का कमी नहीं है। बाद में वृंदावन में और लंदन बॉम्बे में कोई एक लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी बहुत गर्व करके बता रहे थे, देखिए भगवान का भक्ति करने से कोई अभाव नहीं होता है। प्रभुपाद जी पूरा कैलकुलेशन करके उस लेक्चर में बता रहे थे, 108 मंदिर है और हर मंदिर में कोई कोई मंदिर में 400-500 ब्रह्मचारी है और ये लोग सब कोई बाहर नाम नहीं करते, और एक एक मंदिर में वो हिसाब बताया, कोई मंदिर में इतना लाख महीना में खर्चा, कोई मंदिर में इतना डॉलर महीना में खर्चा, और ये सब भगवान प्रोवाइड कर रहा है, पूरा साल में इतना खर्चा, पूरा एक महीना का प्रभुपाद जी 108 मंदिर का कैलकुलेशन करके बता रहे जो इतना खर्चा, इतना मंदिर में, ये मंदिर में इतना कार है, ये मंदिर में इतना कार है, और सारे मेंटेनिंग हो रहा है, सब भगवान ने प्रोवाइड करते। तो भगवान का भक्ति करने से कोई अभाव नहीं रहता है, भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते। विभूतये प्रभुपाद जी जब बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे थे इंडिया में भगवान का वाणी प्रसार करने के लिए, इंडस्ट्री फेल मर गया, भगवान एक एक करके उनका सारे संपत्ति को छीन लिया, तो प्रभुपाद जी एक श्लोक याद करते थे, किसको याद है वो श्लोक, तत्ते अनुकंपा सुसमिक्ष मानो भुंजानो एवा कृतम विपाकम, प्रभु ये आपकी कृपा है, मुझे इस विपाक में डाल दिया, मेरा सारे संपत्ति छीन लिया, ये आपका कृपा है, भगवान का कृपा हमेशा महसूस करते थे हर स्थिति में, ये प्रभु आपकी कृपा है। तो प्रभुपाद जी 40 रुपया में गया लेके गया था और 40 लाख डॉलर सहित महीना में खर्चा हो बाद में सारे मंदिर का, तो ये भगवान नहीं प्रोवाइड करते, भगवान देते हैं ऐसा नहीं, भगवान नहीं देते, भगवान देते हैं भौतिक समृद्धिशाली बना देते उनको, आध्यात्मिक में और भौतिक में उनको समृद्धिशाली बना देते। विभूतये ओके, मैं यही पर विराम देता हूं, किसी का कोई प्रश्न है, टाइम ओवर हो गया। गंतराज श्रीमद भागवतम की जाए, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।